समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर भी और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम आज के अंक में याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मनोज सिंह राणा। मनोज, आपको भी नमस्कार।
Namaskar, Sir Firozi, and a very warm welcome to all the listeners who have tuned into our news magazine program, Parikrama. In this program, we will remember those personalities who were born or those who died on this day, that is, the 20th of May. In addition, we'll provide you with a roundup of national, regional, business and sports news. First, let's begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses the 78th World Health Assembly in Geneva.
सीमा सुरक्षा बल ने आज से पंजाब सीमा पर तीनों संयुक्त जांच चौकियों पर रिट्रीट समारोह फिर से शुरू करने की घोषणा की।
यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह सेज प्राइमरी फोकस ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रमोट साइंस बेस्ड एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा में भारत को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में टेक्रोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया।
And in IPL cricket, Chennai Super Kings to face Rajasthan Royals at the Arun Jaitley Stadium in Delhi this evening. And now it's time. Well, the buzz is here. This buzz is genuine and it indicates that it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Well, today we'll talk about, well, listeners, you might be thinking, what is all the buzz about? None of the bees have entered the studio. Well, it is the 20th of May and it is World Bee Day today. Yes, bees are not only beautiful creatures buzzing around, but are also among the major pollinators that serve as indicators of environmental health, providing insights into ecosystem and the climate. Protecting pollinators also enhances biodiversity and critical ecosystem services such as soil fertility, pest control, and air and water regulation. Sir Firozi, the UN decides a theme every year for World Bee Day. And this year's theme is Be Inspired by Nature to Nourish Us All, highlights the critical roles bee and other pollinators play in agri-food systems and the health of our planet's ecosystems. So, Sir Firozi, please tell our listeners, when did we start celebrating World Bee Day?
जी बिल्कुल मनोज, दुनिया भर में पहली बार विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2018 को मनाया गया था और तब से हर साल इस दिवस को मनाया जा रहा है। ये दिवस मनाया जाता है एंटोन जानसा की याद में, जिन्हें आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रणी और इस क्षेत्र के महान विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
There are many reasons for the worldwide bee mortality, and there is a reason to create awareness regarding bees. First is the problem of loss of habitat due to intensive agriculture, soil consumption and environmental pollution. Many insects are losing their habitat and finding less food. Insecticides are harmful or toxic to bees as well. Weed killers, on the other hand, attack important food sources and destroy them. Sir Firozi, do you remember last time you actually saw a bee buzzing around in your environment?
जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मैंने बहुत वक्त बाद जो भी हमने साउंड प्ले किया उसमें मुझे समझ आया कि हम मधुमक्खी इस तरह की आवाजें निकालती हैं।
That's right. So listeners, if you have seen a bee, please be thankful to that bee. It's not just an insect, it's a pollinator. And in fact, Yurdi Yasmi, director of the FAO Plant Production Protection Division, invites us to recognize the importance of bees and all other pollinators this World Bee Day, as pollinators play vital roles in our foods, economy and ecosystems. He explains.
As we celebrate the World Bee Day, I warmly invite you to join me in recognizing the importance of bees and all other pollinators. They are nature's tireless workers, pollinating over 75% of the world food crops. From apples to almonds, from coffee to cocoa, they play vital roles in our foods, economies and ecosystems. Our agri-food systems, economies and global well-being are deeply connected to these tiny creatures. Governments must implement policies that protect and restore natural habitat. Farmers and businesses must adopt pollinator-friendly practices.
Another question arises, why we celebrate World Bee Day? The aim is to raise awareness of the importance of pollinators, the threats they face, and their contribution to sustainable development. Bees are tiny heroes of our planet. They pollinate about one-third of the food we eat, from apples to almonds, and even help plants grow that feed our livestock. So, Sarfirozi, World Bee Day is actually a reminder to protect these amazing pollinators whose numbers are dropping due to pesticides, climate change, and habitat loss.
जी बिल्कुल. और मनोज, ये आज का जो दिन है, इस वक्त हमें ये भी रुककर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अपनी लालच की वजह से हम किस हद तक, चाहे मधुमक्खी हो, इनके जैसे और पॉलिनेटर्स हो या दूसरे जानवरों के हैबिटेट को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं. और उसका नतीजा फिर ये हो रहा है कि ये जो जानवर है इनका आवास नष्ट हो चुका है और अब ये हमारे करीब आते जा रहे हैं. जैसे हम मधुमक्खी की ही बात करें तो अब मधुमक्खियों के, क्योंकि हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो अब ये कई घरों में, दुकानों में इन्होंने अपने छत्ते बनाने शुरू कर दिए हैं. और इनको हटाने के लिए, इनको सुरक्षा पूर्वक हटाने के लिए फिर हमें और लोगों की जरूरत पड़ती है. तो इनमें से ही मुकेश भी एक हैं जो मधुमक्खियों को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करते हैं. और मुकेश का ये कार्य प्रकृति के प्रति उनके प्रेम और समर्पण का प्रतीक है. वे न केवल मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं बल्कि लोगों को मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूक कर रहे हैं. और मुकेश पिछले 6 साल में 1500 से अधिक मधुमक्खी छत्ते रेस्क्यू कर चुके हैं.
मैं मधुमक्खियों का रेस्क्यू है जो पिछले 6 साल से कर रहा हूँ. बाड़मेर के मधुमक्खियों के छत्ते हटाने की तक मैं लगभग 1500 से 1700 छत्ते हटा चुका हूँ. और हटाकर हम उन्हें सुरक्षित छोड़ देते हैं खुले वातावरण के अंदर, जहाँ वो वातानुकूलित अपना लगा सके छत्ता. जो ओरिजिनल शहद होता है वो दवाइया बनाने के लिए काम आता है, तो हम वो शहद फ्री में देते हैं. और उसके बदले हम जो बेजुबान जीवों के लिए जो हमें सामान की जरूरत होती है वो लेते हैं लोगों से.
That's what Mukesh is doing. But how can we as individuals contribute, Sarfirozi? We can contribute by planting bee-friendly flowers, grow a variety of native plants that bloom at different times of the year. Bees love herbs like lavender, mint, and wildflowers like sunflowers and daisies. We can avoid pesticides. We can choose organic gardening methods or natural pest repellents. We can avoid spraying chemicals, especially when flowers are in bloom. We can also support local beekeepers. We can buy local honey and bee products that help sustain ethical beekeeping.
और मनोज, एक और काम जो हम कर सकते हैं कि अगर कभी भी हम अपने घर के आसपास मधुमक्खी के छत्ते देखें तो उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाकर हम प्रोफेशनल लोगों को बुलाकर उन्हें, ताकि वो भी सेफ्टी से उनको रेस्क्यू किया जा सके, जैसे कि हमने अभी देखा मुकेश जी किस तरह रेस्क्यू करते हैं.
That's right. And let's raise awareness and educate others, and especially kids, about the importance of bees. So let's spread awareness, plant some bee-friendly flowers, and maybe even skip mowing the lawn for a bit. Without bees, our planet would look very different.
पराग से ये शहद बनाती, फसलों का पैदावार बढ़ाती. इसका शहद है बहुत गुणकारी, दूर भगाता रोग बीमारी. देखो मधुमक्खी का छत्ता, डाल पे कैसे है वो लटका.
श्रोताओं, श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं देश की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास क्या खास जानकारी है। मनोज, सबसे पहले कहाँ चल रहे हैं?
So first of all, let's travel to the west of the nation. Let's go to Nagpur. In efforts to implement the National Education Policy 2020 more effectively, Nagpur University forms School of Law in centenary year of Dr. Baba Saheb Ambedkar Law College. Here is a detailed report from our correspondent.
In a significant academic restructuring move, Nagpur University has announced the formation of a School of Law by merging the iconic Dr. Baba Saheb Ambedkar Law College and the Postgraduate Department of Law. This decision, taken during the college's centenary year, aligns with the university's efforts to implement the National Education Policy 2020 and transform 40 to 50 PG departments into multidisciplinary schools. The new School of Law will be located on the existing Amravati Road campus and offer an integrated academic journey from undergraduate to PhD. The initiative received approvals from all statutory bodies and was facilitated by Management Council member Samay Pansot. This merger ensures academic continuity and strengthens our national standing, the university stated, emphasizing its aim for both national and international recognition. The move is also expected to bring administrative efficiency by unifying UG and PG programs under one roof. The decision was widely welcomed by the legal fraternity in Nagpur. This School of Law marks a new chapter in the university's legal education legacy, poised to join the ranks of leading law institution in India. This is Hemangi Kulkarni with Dhananjay Vankhede for Parikrama from Akashvani Nagpur.
श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं शिलांग, जहां पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पिछले दिनों असम और पूर्वोत्तर भारत में चल रही अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने समय पर परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया।
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम और पूर्वोत्तर में 1000 करोड़ रुपए की जलमार्ग अवसंरचनाएं परियोजना शुरू की गई हैं, जिन्हें वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिनमें 300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष 700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वर्ष 2025 तक पूरी कर ली जाएंगी। यह प्रयास माल और यात्री परिवहन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। इनमें ब्रह्मपुत्र और बराक नदी पर बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। बैठक में दायांग झील पर अंतरदेशीय जल परिवहन परियोजना की समीक्षा की गई। नागालैंड में नौने और शिल्लोई झील में जल क्रीड़ा और पर्यटन की संभावना का मूल्यांकन किया गया। साथ ही मिजोरम में तियावंग और चिमतुई पुई नदियों, मेघालय में उमियम झील और उमगोट नदी पर अंतरदेशीय जल मार्ग विकास की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जलवाहक जैसी योजनाएं कारोबारियों को किफायती, कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि गुवाहाटी में समुद्री कौशल विकास केंद्र और डिब्रूगढ़ में अंतरदेशीय जल परिवहन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से युवाओं को पोत संचालन, माल प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स में प्रशिक्षित किया जा रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिलांग से
Sir Firozi, in the Indian culture, rivers are revered as goddesses, sacred lifelines that nurture life and civilization. So from the northeast, let us take our listeners back to the western part of the country. Echoing this deep-rooted belief, Prime Minister Narendra Modi has consistently emphasized the importance of keeping our rivers clean and sacred. Taking this vision forward, the Ahmedabad Municipal Corporation has launched a mega river cleaning initiative for the Sabarmati River. A report from our correspondent.
The Sabarmati River, considered a lifeline of Ahmedabad, gracefully divides the city into two parts and it's home to India's first of its kind riverfront. Currently running dry from May 12 to June 5 due to pre-monsoon repair and maintenance work, this period has been turned into a golden opportunity by the Ahmedabad Municipal Corporation for a large-scale cleaning drive of the river. The Sabarmati River mega cleaning drive, which began 5 days ago, has seen enthusiastic participation from over 30,000 1,000 citizens and more than 180 NGOs. Speaking to Akashwani, Deputy Commissioner of Ahmedabad Municipal Corporation, Amritesh Aurangabadkar, shared that 288 metric tons of waste has been collected so far in the drive.
Abhi tak 288 metric tons ka kachra hum nadi mein se bahar nikal paaye hain. साथ ही में जहाँ पे कुछ आइलैंड्स हुए होंगे नदी के अंदर जिसको डेब्रिस कुछ गिरा होगा तो वो भी हम अभी सफाई का अभियान चालू कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी जैसे हम नदी को दोनों तट को हमने विभाजित कर दिया है अलग अलग सेगमेंट्स में, जैसे जैसे नदी सूखती जाएगी वैसे वैसे हम आगे के स्टेजेस में भी ये सफाई का अभियान चालू रखें। रिलीजियस टाइप का जो धार्मिक निर्माल्य है वो पूरा अलग तरीके से कलेक्ट हो, उसका प्रोसेसिंग का भी सुविधा अभी शॉर्ट टाइम में कॉरपोरेशन की तरफ से शुरू किया जाएगा।
दिस इनिशिएटिव ऑफ AMC स्टैंड्स एज एन इंस्पिरेशन फॉर अदर सिटीज विद रिवर्स शोकेसिंग how community-driven efforts can lead to transformative environmental action. For Parikrama, this is Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
मनोज, हम देश भर के कई राज्यों में गए, कई राज्यों की परिक्रमा की और अपने श्रोताओं को बताया कि किस तरह की हलचल हो रही है पूरे देश भर में, मगर खेल के मैदान में क्या चल रहा है?
Delhi Chief Minister Rekha Gupta officially inaugurated the Delhi Games 2025 today at the Talkatora Stadium in New Delhi. Speaking on the occasion, she said that the Delhi Games will play an important role in identifying and nurturing athletes for future national, Commonwealth and Olympic level competitions. Mrs. Gupta also highlighted that the Delhi government has doubled the sports budget and increased the prize money fund fourfold. She emphasized the government's commitment to promoting sports talent and developing world-class sports infrastructure in the city.
आपको स्टेडियम मिले, स्पोर्ट्स ग्राउंड मिले, इक्विपमेंट्स मिले और इसके साथ साथ खेलों को राज्य स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल सहयोग भी हमारे खिलाड़ियों को मिले, इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है।
And addressing the gathering, Delhi's Sports Minister Ashish Sood said that they are taking all necessary steps to strengthen the sports ecosystem in the capital.
दिल्ली में दिल्ली सरकार का यह संकल्प है कि खेलों को केवल आयोजन तक हम सीमित नहीं रखेंगे, दिल्ली में फेस्टिविटी का माहौल, दिल्ली में खेलों के प्रति ऊर्जा का माहौल, दिल्ली में शिक्षा और खेल फेस्टिविटी की तरह मनाए जाए, उत्सव की तरह मनाए जाए, इसके लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।
The mega sporting event will witness participation from over 12,000 athletes competing across more than 40 disciplines at over 25 venues across the city.
और अब बात आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हालांकि दोनों टीम प्लेऑफ की दौर से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी सनराइजर्स हैदराबाद से 6 विकेट से हारने के बाद प्लेऑफ दौर से बाहर हो गई। गुजरात टाइटन्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स प्लेऑफ मुकाबले के लिए पहले ही अपना स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं।
And now, after Dateline and news from the states and sports, it's time for business news. Major domestic equity indices saw more than 1% decline, dragged down mainly by weakness in auto, FMCG and financial stocks. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, fell 873 points or 1.06% to close at 81,186. At the National Stock Exchange, Nifty 50 fell 261 points or 1.05% to settle at 24,684. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading at 93,990 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was trading at 96,100 rupees per kilogram when reports last came in. Now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember great nationalist Bipin Chandra Pal, who died on the 20th of May 1932. He's widely known as the part of the famous trio of Lal Bal Pal, comprising Lala Lajpat Rai and Bal Gangadhar Tilak.
Bipin Chandra Pal, popularly known as the Bengal Tiger, was considered one of the most independent and outspoken thinkers. In the wake of the partition of Bengal in 1905, the British government came out with repressive measures to contain students' participation in the struggle. One of them was the Carlisle Circular, which was issued by the Chief Secretary of Bengal, Thomas Carlisle. Bipin Chandra Pal protested strongly against the circular and advocated for education on nationalistic lines. In one of his lectures, he said,
"Why should politics be tabooed from our university and our schools? Do they do it in England? Is politics condemned even in the public schools of England? In the universities, do they not discuss patriotic and academical problems, but actually deal with the burning political questions of the day?"
Bipin Chandra continued to work for the nation till his death. We salute the great nationalist.
We also remember Andhra Kesari Tanguturi Prakasam, who died on the 20th of May 1957. Prakasam protested against the Simon Commission and took part in the Salt Satyagraha and the Quit India movement.
Prakasam was born on the 23rd of August 1872 in Guntur district of present-day Andhra Pradesh. In 1904, Prakasam went to study law in the United Kingdom. During his time in the UK, he interacted with Indian nationalist leaders like Dada Bhai Naroji, Ramesh Chandra Dutt and Lala Lajpat Rai. The nascent interest he developed in the Indian independence movement was then fueled when he returned to India and started practicing at the Madras High Court. Inspired by the speeches of Bipin Chandra Pal, who was campaigning in Madras during the early 1900s, Prakasam decided to give up his law practice and devote his life to the independence movement.
Prakasam took an active part in the protests against the Simon Commission and led the successful Salt March in the Madras Presidency. He was arrested for his participation in the Quit India movement. He was popularly known as Andhra Kesari, the Lion of Andhra, for his valour during protests against the Simon Commission. He started the newspaper Swarajya in English, Tamil and Telugu. The newspaper served as a platform for his involvement in ground-level politics.
Prakasam was elected to the Madras Provincial Legislature in 1937 and served as the Revenue Minister. He won the elections again in 1946 and became the Chief Minister of Madras Presidency. Prakasam was also elected to the Constituent Assembly from Madras.
After independence, Prakasam worked towards the creation of the state of Andhra Pradesh on linguistic lines. He formed the Hyderabad State Praja Party in 1952. Prakasam was appointed as the first Chief Minister of the newly formed state of Andhra Pradesh in 1953. Till his death on the 20th of May 1957, Prakasam continued to work for the weaker sections of the society. We salute the great Indian.
We also remember Indian National Army member Lance Naik Hari Ram. A resident of Haryana, Hari Ram served in the 3rd Guerrilla Regiment of INA and was martyred in action near Indo-Burma borders on the 20th of May 1944. We salute the great son of the soil.
और अब समय है उन खास हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिवस है। आज हम राजकुमार शुक्ल को याद कर रहे हैं। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया, जिसके कारण बाद में चंपारण सत्याग्रह हुआ। इनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने सन 2000 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बिहार सरकार ने पटना के गांधी संग्रहालय में पंडित राजकुमार शुक्ल की एक प्रतिमा स्थापित की। आज कवि पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की भी पुण्यतिथि है। सनेही जी आरंभ से ही मेधावी छात्र रहे। काव्य रचना का शौक इन्हें बचपन से रहा। इनकी प्रकाशित रचनाओं में प्रेम पच्चीसी, कुसुम अंजाली, कृषक क्रंदन, त्रिशूल, तरंग, राष्ट्रीय मंत्र आदि शामिल हैं।
John Stuart Mill was born on this day in 1806 in London, England. He was an English philosopher, economist and exponent of utilitarianism. He was prominent as a publicist in the reforming age of the 19th century. He elaborated in detail on utilitarianism in his book by the same name. He believed that the overarching goal of utilitarianism is to achieve the greatest happiness principle, the greatest good for the greatest number as the result of human action. In his essay on social freedom, freedom. He said in Sarfirozi, all of us can relate to, and I quote, "Men do not desire merely to be rich, but to be richer than other men," unquote. It is also noteworthy that Mill also served as an employee of the East India Company from 1823 to 1858.
आज हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत की जयंती है। सुमित्रा नंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। इनका रचनाकाल 1916 से 1977 तक लगभग 60 वर्षों तक रहा। इनकी काव्य यात्रा के तीन चरण देखे जाते हैं। 1916 से लेकर 1935 का पहला चरण छायावादी काव्य का है, जिस दौरान वीणा, ग्रंथि आदि प्रकाशित हुए। कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध और अनुवाद में भी योगदान दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, चितंबरा, युगवाणी, बूढ़ा चांद आदि हैं। पद्मभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजे जा चुके पंत की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी होता है। वो अक्सर मनुष्य की तुलना प्रकृति से करते थे, जैसे एक साक्षात्कार में इन्होंने स्त्री की तुलना फूल से की।
मैंने हमेशा स्त्री के लिए लिखा है कि उसका हृदय तो तिजोरी में बंद है, उसको तो ऐसा होना चाहिए जैसे फूल अपने नाल से बंधा रहता है, वैसे स्त्री को अपने परिजन से तो बंधा रहना चाहिए घर से, लेकिन अपने हृदय की सौरभ जैसे फूल समस्त लोगों को देता है, वैसे स्त्री को अपनी भावना समस्त लोगों को देनी चाहिए, जिससे कि भावना का आदान प्रदान हो सके, क्योंकि स्त्री का सबसे सुंदर हिस्सा देह नहीं है, उसकी भावना है।
We have another literary giant who was born on this day in 1799 in Tours in France, Henri de Balzac. Balzac was a French literary artist who produced a vast number of novels and short stories collectively called La Comédie Humaine, that is, the human comedy. He helped to establish the traditional form of the novel and is generally considered to be one of the greatest novelists of all time. He helped establish the technique in which consequent and logically determined events are narrated by an all-seeing observer called the omniscient narrator, and characters are coherently presented. In all his varied works, Balzac emerged as the supreme observer and chronicler of contemporary French society.
आज अभिनेता नाना पालसीकर की जयंती है, जिन्होंने 126 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। इन्होंने 1935 की फिल्म धुवंधर से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद 1960 में आई फिल्म कानून, 1964 की शहर और सपना और 1982 में फिल्म गांधी में काम किया। पालसीकर को 1962 और 1965 में दो बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम आपको सुनाने जा रहे हैं इनकी फिल्म का एक डायलॉग।
तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो?
हजूर, मैंने खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, बिल्कुल निर्दोष हूँ मैं बाप। आप ही बताइए, मैं खून कर सकता हूँ? सरकार, मैं सच कहता हूँ, पर मेरी कोई नहीं सुनता।
मैं बाप, आपके सिवाय मुझे कोई नहीं बचा सकता। आप तो जो साहब है, सब कुछ जानते हैं मैं बाप, सब कुछ जानते।
सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दो, तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो या नहीं?
मैंने खून ही नहीं किया तो हाँ कैसे कह दूं सरकार?
तुम्हारा कोई वकील है?
आप ही मेरे वकील है सरकार, मैं गरीब आदमी हूँ, वकील वाली सरकार से लाऊं, और मैंने तो बहुत दिनों से चोरी भी नहीं की सरकार।
आज भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में से एक पीरू सिंह शेखावत की जयंती है। कश्मीर घाटी के युद्ध में सक्रिय रूप से जूझते हुए उन्होंने पीर कांति और लेडिग्नी ठिकानों पर अपनी फतह हासिल की। वर्ष 1948 में दारापारी के युद्ध में पीरू सिंह ने वीरगति प्राप्त की। इनकी वीरता और बलिदान के लिए इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
Nandamuri Tarak Rama Rao Jr., popularly known as NTR Jr., was born on this day in 1983 in Hyderabad, the then Andhra Pradesh. He's an Indian film actor. He's also a Kuchipudi dancer, a playback singer and television personality known for his works in Telugu cinema. In 1996, he starred as a child artist in Ramayanam, which won the National Film Award for Best Children's Film for that year. His debut as an adult was in 2000 with the film Ninnu Chudalni. He's also received two State Nandi Awards and two Filmfare Best Telugu Actor Awards. And who can forget the S.S. Rajamouli's magnum opus RRR, which became a global phenomenon, earning him the pan-Indian fame and universal recognition.
बैल जैसे धूल उड़ा के सिंग उठा के तुम भी नाचो बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो
हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो
अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो
मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो
हाँ जा छोरे
हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो नाचो नाचो
श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का इजाजत दीजिए सर फिरोजी और मनोज को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की नमस्कार।